मेरे विचार से तथ्यों तथा निश्चयों की यह द्वैधता मौलिक है। स्वयं तथ्यों में कोई अर्थ नहीं होता, वे हमारे निश्चयों के माध्यम से अर्थ प्रदान कर सकते हैं। इतिहासवाद वस्तुतः इस द्वैधता के समाधान के विविध प्रयासों में एक है, किंतु यह इस अभिज्ञान से कतराता है कि हम जिन प्रतिमानों को चुनते हैं उनका भी उत्तरदायित्व हमारे ही ऊपर होता है। यह मानकर चलता है कि जहां हमने नहीं बोया है वहां भी काट सकते हैं। यह हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि यदि हम केवल इतिहास के साथ चरण मिलाकर चलें तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तथा यह कि हमारे लिए कोई निश्चय लेना आवश्यक नहीं होगा। यह हमारे उत्तरदायित्व का बोझ इतिहास पर डाल देने का प्रयास करता है। जुए की तरह इतिहासवाद हमारे कर्मों की तर्कशीलता तथा उत्तरदायित्व में निराशा से उद्भूत हुआ है। यह एक दूषित आशा तथा श्रद्धा है। यह एक मिथ्या विज्ञान से उद्भूत निश्चितता द्वारा हमारे नैतिक उत्साह तथा सफलता के प्रति घृणा से उद्भूत आशा तथा श्रद्धा के प्रतिस्थापन का प्रयास है। यह मिथ्या विज्ञान ग्रहों का हो, मानव स्वभाव का अथवा ऐतिहासिक नियति का। इतिहास न केवल तर्क बुद्धि के आधार पर आधारणीय है, यह अंतरात्मा के महत्व की शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी धर्म के विरोध में है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी धर्म इतिहास के विषय में इस तर्कशील दृष्टिकोण से सहमत होगा कि अपने कर्मों के लिए इतिहास के मार्ग पर उनके प्रभावों के लिए हम स्वयं ही उत्तरदायी हैं। यह सच है कि हमें आशा चाहिए, बिना इसके हमारी शक्ति जवाब दे जाएगी, किंतु हमें कुछ अधिक नहीं चाहिए और न ही हमें कुछ अधिक मिलना चाहिए। हमें निश्चितता नहीं चाहिए। धर्म में इतिहासवादी तत्व प्रतिमोपासना का अंधविश्वास का तत्व है। तथ्यों तथा निश्चयों की द्वैधता पर बल प्रगति जैसी अवधारणाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी निर्धारित करता है। यदि हम यह मानते हैं कि इतिहास प्रगति करता है अथवा यह कि हम प्रगति से बंधे हैं, तो हम उन लोगों की तरह उसी प्रकार की गलती करते हैं जो यह मानते हैं कि इतिहास में एक अनविश्य अर्थ होता है जिसके लिए आवश्यकता नहीं कि हम इसे प्रदान करें। क्योंकि प्रगति का अर्थ होता है किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, एक ऐसा लक्ष्य जिसका मनुष्यों के रूप में हमारे लिए अस्तित्व है। इतिहास यह नहीं कर सकता, केवल हम मनुष्य ही यह कर सकते हैं। हम यह उन प्रजातांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा द्वारा तथा उसे शक्तिशाली बनाकर कर सकते हैं जिन पर स्वतंत्रता एवं इसके साथ प्रगति निर्भर होती है, और तब हम इसे और भी ठीक से कर सकेंगे जब हम इस तथ्य से और अधिक अभिज्ञ होंगे कि प्रगति हमारे ऊपर हमारी सजगता, हमारे प्रयासों, अपने लक्ष्यों की अवधारणाओं के प्रति हमारी स्पष्टता तथा उनके चयन की वास्तविकता पर निर्भर है। धर्मदूत बनने के स्थान पर हमें अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहिए। हमें यथासंभव अपने कार्य को ठीक से करना चाहिए तथा अपनी भूलों को समझना चाहिए, तथा जब हम इस विचार से मुक्त हो जाएंगे कि शक्ति का इतिहास हमारा निर्णायक होगा, तब जब हम इसकी चिंता छोड़ देंगे कि इतिहास हमारा औचित्य स्थापन करेगा अथवा नहीं, तब संभवतः एक दिन हम शक्ति पर नियंत्रण पा सकने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार का हम इतिहास का भी औचित्य स्थापन कर सकते हैं। इसे पूरी तरह औचित्य स्थापन की अपेक्षा है। ऐतिहासिक अवसंभाविता, इसाइया बर्लिन के अनुसार, इतिहास में प्रशंसा अथवा दोषारोपण की समीचीनता है अथवा नहीं, इस विषय पर पर्याप्त विवाद रहा है और विभिन्न प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान कालीन मूल्यों को अतीत पर लागू करना कहाँ तक उचित होगा, अथवा किसी अन्य वर्ग का मूल्यांकन हम अपने मूल्यों के आधार पर कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न स्वभावतः उठते हैं। कुछ लोग जो मनुष्य को इतिहास प्रवाह तथा मानव नियति के समक्ष नगण्य तथा असहाय मानते हैं, वे मनुष्य को उसी किसी असफलता के लिए कदापि उत्तरदायी ठहराने के पक्ष में नहीं हैं। इतिहास की अपनी निश्चित दिशा है, जिस ओर वह अग्रसर हो रहा है इसे समझना सरल नहीं, किंतु इस प्रकार की सभी व्याख्याएं विवादास्पद हैं। यहाँ इस विषय पर जन सामान्य के समान विचारों को समझना उचित होगा। समान परिस्थितियों में हम जब क्रॉमवेल की प्रशंसा अथवा निंदा करते हैं अथवा जब हिटलर की चर्चा करते हैं, तब हम अपने वक्तव्य में कुछ भी संकटास्पद अथवा आपत्तिजनक नहीं देखते, न ही हम यह अनुभव करते हैं कि यह कहने में कि बेलाक अथवा मैकाले ने में रांके अथवा हालेवी की तुलना में निर्व्यक्तिक सत्यता का अभाव था, हम कोई आश्चर्यजनक बात कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए हम क्या निश्चित करना चाह रहे हैं? क्या हम केवल यह कह रहे हैं कि बेलाक अथवा मैकाले की तुलना में हमें रांके के निष्कर्ष अथवा हालेवी का समान स्वर अधिक रुचिकर लगता है, किंतु क्या क्रॉमवेल की नीतियों अथवा बेलाक द्वारा उन नीतियों के विवरण के हमारे मूल्यांकन इस बात का समर्थन नहीं करते कि हमारे नैतिक तथा बौद्धिक आदर्श उन आदर्शों से भिन्न हैं? क्या इसमें यह संकेत नहीं निहित है कि हम यह सोचते हैं कि वे अनुरूप में कार्य कर सकते थे और यही नहीं, उन्हें अनुरूप में कार्य करना चाहिए था? और जब हम यह मानते हैं कि उनका व्यवहार भिन्न प्रकार का हो सकता था अथवा होना चाहिए था, तो क्या यह हमारे द्वारा यह न समझ सकने की मनोवैज्ञानिक अयोग्यता का लक्षण है कि वे भिन्न प्रकार से, क्योंकि कोई भी कर सकता है, व्यवहार नहीं कर सकते थे? इस प्रकार के विचार का अभिप्राय यह होगा कि हमारे लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि हम इस प्रकार की बात न कहें और यह याद रखें कि हम सभी समान रूपेण मोहग्रस्त हैं, तथा यह याद रखें कि नैतिक उत्तरदायित्व एक कल्पना है कि ज्ञान की तथा भाषा के सम्यक उपयोग की वृद्धि के साथ इस प्रकार की अर्धनैतिक अभिव्यक्तियां तथा उनके आधार स्वरूप मानव स्वतंत्रता की मिथ्या अवधारणा सब मनुष्यों के शब्दकोश से सर्वथा विलुप्त हो जाएगी। इसी चिंतन प्रवृत्ति का एक भाग यह आग्रह है कि यद्यपि विश्व में नैतिकता की विचारणा से पूर्णतया मुक्ति संभव नहीं है, तथापि इतिहासकार को ऐसी प्रवृत्तियों का समन करना चाहिए। इतिहासकार के रूप में हमारा कार्य विवरण देना तथा व्याख्या करना है, निर्णय देना नहीं। यह कहा जाता है कि इतिहासकार निर्णायक नहीं अपितु अन्वेषी हैं। उनका कार्य साक्ष्य प्रदान करना है तथा पाठक अपनी इच्छा अनुसार नैतिक निष्कर्षों की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार की अवधारणा इतिहास की यथा तथ्य भौतिक विज्ञानों में से कुछ के साथ समानता के विश्वास पर आधारित है। इन विज्ञानों में निर्व्यक्तिकता का एक विशिष्ट अर्थ होता है। इतिहास निश्चित रूपेण इस अर्थ में विज्ञान नहीं, यह कुछ ऐसी अवधारणाओं तथा कोटियों का प्रयोग करता है जो इसमें ही द्रष्टव्य होते हैं, किंतु ये सभी समान ज्ञान से संबद्ध होती हैं। यद्यपि विशेषकृत इतिहास लेखनों में कुछ परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार वे भौतिक विज्ञानों का कुछ कुछ स्वरूप धारण करते हैं, किंतु समान इतिहास सामाजिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक में हम समान जीवन के अनुभवों के आधार पर ही अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। अतीतकालिक किसी पात्र नेपोलियन अथवा टेलीरा के निरूपण में हम अपने समसामयिक व्यक्तियों तथा घटनाओं के अवबोध को ही आधार बनाते हैं। जिस प्रकार हम अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं, उसी प्रकार हम इतिहासकारों पर पूर्वाग्रह मूर्खता असत्यता का दोषारोपण कर सकते हैं और इसमें समान प्रकार का न्याय तथा तर्कशीलता होगी। केवल यह मानने पर ही कि इतिहास द्वारा मनुष्यों को भौतिक वस्तुओं के रूप में ही लिया जाना चाहिए, इसकी कार्यविधा को भौतिक विज्ञान के प्रतिमान में सन्निविष्ट किया जा सकता है। मनुष्य पर उद्देश्यों तथा प्रेरणाओं से युक्त प्राणी के रूप में विचार एक नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की अपेक्षा रखता है और इतिहासकार मनुष्यों के कार्य व्यापारों की चर्चा करता है। इतिहासकारों से इस प्रकार के मूल्यांकन से बचने का आह्वान मानवीय अध्ययनों के उद्देश्यों तथा कार्य विधियों को प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों तथा कार्य विधियों के समान समझने के भ्रम पर आधारित है। यह पिछले वर्षों की महानतम तथा सर्वाधिक विनाशकारी मिथ्या धारणाओं में से है। ऊपर के लेख में बर्लिन का प्रमुखतम आग्रह यह है कि इतिहास का अध्ययन विषय ही मूल संपृक्त है। इस प्रकार वह एक ज्ञान सापेक्षवादी विचार के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वह यह तो स्वीकार करता है कि इतिहास को छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, किंतु वह उस न्यूनतम नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से बचने की आशा नहीं कर सकता जो मनुष्य को प्रयोजनों तथा अभिप्रायों से युक्त प्राणी के रूप में देखने में अपरिहार्य रूपेण सन्निविष्ट है। बर्लिन ने यह कहा कि है कि इतिहास कोई अपनी विशेष रूपेण निर्मित परिभाषिक शब्दकोश से युक्त नियमनिष्ठ शास्त्र नहीं है। यह अतीत को उसी रूप में समझने का एक प्रयास है कि जिस रूप में साधारण मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र के अधिष्ठान वर्तमान को समझने का प्रयास करता है। उसके विचारानुसार जनसामान्य की भाषा का प्रयोग करते ही इतिहासकार को विवश होकर, वह चाहे अथवा नहीं, इसे इस बात का भी ज्ञान हो अथवा नहीं, अपने अध्ययन विषय की मूल संपृक्त चर्चा करनी होती है, क्योंकि विजय, षड्यंत्र, अवस्था, राजनीतिक विवेक जैसे शब्द जो इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त समान शब्द हैं, केवल विवरणात्मक शब्द नहीं हैं। अपनी पुस्तक नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री में लियो अस्ट्रास इसी निष्कर्ष पर एक दूसरे ढंग से पहुंचा है। उसका आग्रह है कि कला के इतिहास में किसी चित्र विशेष का विवरण सौंदर्य शास्त्रीय मानदंडों के व्यवहार के बिना कैसे हो सकता है। इसी प्रकार धर्म के इतिहास में धार्मिक निर्णयों का व्यवहार तथा युद्ध के इतिहास में विविध सेना अध्यक्षों के व्यूह नैपुण्य का मूल्यांकन अपरिहार्य है। इतिहासकार किसी वस्तु के विषय में इसके स्वरूप को जाने बिना नहीं लिख सकता तथा बिना मूल्यारोपण किए हुए वह अध्ययन के एतद्रूप विषयों को कैसे जान सकता है। ज्ञान सापेक्षवादियों के आलोचकों का यह कहना है कि इसका कोई भी प्रत्याख्यान नहीं करेगा कि अपने तथा दूसरे के कार्यों की चर्चा में हम अवश्य ही नैतिक, सौंदर्य शास्त्रीय एवं अन्य प्रकार के मानदंडों का व्यवहार करते हैं और एक अर्थ में ये निश्चित रूपेण हमारे मूल्यांकन की अपेक्षा रखते हैं। किंतु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार के मूल्य निर्धारण को ऐतिहासिक जिज्ञासा का आवश्यक लक्षण माना जाए। अर्नेस्ट नेगल का उत्तर नकारात्मक है। उसका तर्क है कि यह मानना भयंकर भूल होगा कि एक मोटा गोरक्षक ही मोटी गायों को हाँक सकता है। उसी प्रकार की भूल यह माननी होगी कि कोई व्यक्ति नैतिक अथवा सौंदर्य शास्त्रीय मूल निर्धारणों में पड़े बिना मूल्यों तथा मूल्यांकनों की परिस्थितियों एवं उनके परिणामों के प्रति जिज्ञासा नहीं कर सकता। इसी प्रकार बटरफील्ड ने कहा है कि यद्यपि जीवन का प्रत्येक अंश नैतिकता से संबद्ध है, किंतु इतिहासकार के रूप में इतिहासकार का कार्य नैतिक निष्कर्षों का निर्धारण नहीं है। उसका वास्तविक दायित्व घटनाओं की दर्शनीय अंतर्संबद्धताओं का अध्ययन है। इस प्रकार की गवेषणा में नैतिक निर्धारण स्वभावतः अप्रासंगिक है। वह वस्तुतः इसके बौद्धिक क्षेत्र के बाहर है। इतिहास में भाग्य तथा दुर्भाग्य, जैकब बर्कहार्ट के अनुसार 1879 में अपनी मृत्यु के समय बर्कहार्ट को एक गौण इतिहासकार के रूप में विशेष रूपेण कला के इतिहासकार के रूप में जाना जाता था। आज उसकी गणना 19वीं शताब्दी के प्रमुख दार्शनिक इतिहासकारों में की जाती है। वह स्विट्जरलैंड का निवासी था, किंतु उसकी शिक्षा जर्मनी में हुई। रांके उसका शिक्षक था। रांके ने इतिहास को तथ्यात्मक इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया, किंतु बर्कहार्ट को इतिहास अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत एवं अधिक वैयक्तिक लगा है। उसने मनुष्य के सृजनात्मक एवं राजनैतिक कार्य व्यापारों में विभेद नहीं किया। उसके लिए इतिहास सभ्यता का इतिहास था एवं उसके अनुसार सभ्यता का इतिहास सभी कुछ को धर्म कला साहित्य साथ लेकर चलता है। वस्तु सामग्रियों का इसका चयन इसके अभ्यांतर सिद्धांत का अनुसरण करता है। यह उल्लेखनीय है कि जहां रांके का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक इतिहास अब उतना लोकप्रिय नहीं रह गया है, बर्कहार्ट का अवैज्ञानिक सांस्कृतिक इतिहास अब भी हमें उद्वेलित करता है। बर्कहार्ट ने मानव सभ्यता को सर्वाधिक मूल्य प्रदान किया है। उसके अनुसार यह एक नाजुक वस्तु है और संख्या की दृष्टि से शक्तिशाली, भौतिकवादिता से संपन्न एवं स्वातंत्र्य के प्रति उदासीन जनसमूह के विद्रोह से इसकी रक्षा ठीक प्रकार से केवल एक शिक्षित शासक वर्ग ही कर सकता है। उसके उदारवादी समसामयिकों ने 1848 के विद्रोहों का स्वागत किया था। उनके अनुसार वे प्रगति की दिशा में मनुष्य की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण चरण के परिचायक थे, किंतु बर्कहार्ट इस प्रकार के छिछले तर्कों से संतुष्ट नहीं था। अपने इन समसामयिकों के समान उसे अनंत प्रगति में विश्वास नहीं था। इस प्रकार के तर्कों को घृणापूर्ण समझता था, क्योंकि इनमें उन मौतों तथा उस कीमत की ओर ध्यान नहीं दिया गया था जो इनमें सन्निविष्ट थी। इनसे सरलतापूर्वक बचा जा सकता था। बर्कहार्ट ने बार बार इस बात पर बल दिया है, जहां उदारवादी इतिहासकार अतीत की केवल उन शक्तियों एवं घटकों की चर्चा करते हैं जिनसे वर्तमान निर्मित हुआ है। बर्कहार्ट ने बार बार यह याद दिलाया है कि वर्तमान में बैठकर किसी अतीतकालिक युग का मूल्यांकन करना समीचीन नहीं है एवं किसी भी विजय अथवा आंदोलन की केवल इस कारण प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए कि इससे आधुनिकता का उद्भव हुआ है। इस प्रकार के दृष्टिकोण में कितनी निर्मम हृदयहीनता है। संपूर्ण विनष्ट लोगों के मौनकृत रुदनों के प्रति कैसी उपेक्षा है। उसका प्रछन्न तर्क यह था कि यदि इसके लिए जो कीमत देनी पड़ी उसके बावजूद भी 1848 का विद्रोह एक महिमावान विद्रोह था, तो इसके समर्थकों का यह कर्तव्य है कि वे यह बतावें कि यह क्या परिणाम प्रदान करेगा। अपनी प्रगति विषयक अवधारणा के आधार पर उनका विश्वास था कि यह उन्हें अपरिहार्य रूपेण स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। बर्कहार्ट का विश्वास था कि वह इतिहास के आधार पर इस धारणा की अनुपयुक्तता सिद्ध कर सकता है। अन्य सार्वभौमिक इतिहासकारों के विपरीत बर्कहार्ट ने नई संभावनाओं के प्रति अपने मस्तिष्क के द्वार को कभी भी बंद नहीं किया। वह इतिहास पर कोई योजना लादने के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वह सभी इतिहास दर्शनों का प्रत्याख्यान करता है कि जिनमें जैसा कि वह इतिहास दर्शन शब्द को समझता था, मानव इतिहास को एक समष्टि के रूप में देखने का प्रयास किया जाता था। प्राचीन परंपराओं तथा मूल्यों के प्रति अपने दृढ़ विश्वास तथा गंभीर ऐतिहासिक ज्ञान के कारण वह विज्ञान के अंधानुकरण में नहीं प्रवृत्त हुआ और न ही इस प्रकार की व्याख्याएँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वह सही अर्थ में उदारवादियों के समान मानव इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। प्राचीन सभ्यता से उसे प्रेम था एवं उसका आग्रह था कि जब तक कि हम फिर से असभ्य नहीं बन जाते, अतीत से मुक्ति नहीं हो सकती। कुछ विशेष परिस्थितियों की स्थिरता में निहित सुख की अवधारणा स्वभावतः दोषमय है। मनुष्य की आदि अर्थात प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर, जिसमें कि प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक शताब्दी दूसरे अन्य दिनों तथा शताब्दियों के समान होती है, जब से किसी भी संयोग से ऐतिहासिक जीवन प्रारंभ होता है, स्थिरता का अर्थ जड़ता तथा मृत्यु होगा। अपने सभी कष्टों से संयुक्त गति में ही जीवन है। सुख दुख का प्रभाव मात्र है, जो कि अधिक से अधिक विकास की धूमिल अवधारणा के साथ संबंध होता है। यह सच है कि ऐसे समाज हुए हैं जो शताब्दियों तक जीवन के उसी समान चित्रण को प्रस्तुत करते हैं तथा अपनी नियति के प्रति संतोष का भाव प्रकट करते हैं। यह एक प्रकार की निरंकुशता का परिचायक है जो उस समय उत्पन्न होती है, जबकि राज्य तथा समाज एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुकता है एवं विरोधी शक्तियों से इसकी सुरक्षा करनी होती है। यह सच है कि इस समाज की पहली पीढ़ी अप्रसन्न रही होगी, किंतु बाद की पीढ़ियां विचारों की इस विशिष्ट ढांचे में ढलती है और अंततः इसे पवित्र मान लेती है एवं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती। दूसरी ओर ऐसे समाज युग तथा व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा तीव्र गति में शक्ति व्यय किया जाता है। उनका महत्व पुराने के विनाश तथा नए के लिए मार्ग प्रशस्त करने में निहित होता है। पृथ्वी पर दुष्कर्म निश्चित रूपेण विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में शक्ति अथवा दुर्बल पर शक्ति संपन्न का अधिकार पशु जगत तथा वनस्पति जगत में सर्वत्र दिखाई पड़ता है एवं मानवता की प्रारंभिक अवस्थाओं में यही बात हत्या, डकैती, दुर्बल एवं पराजित जातियों के अथवा उसी जाति अथवा समाज में दुर्बल व्यक्तियों के अलावा दुर्बल राज्यों के उन्मूलन अथवा दासत्व भाव में रूपांतरण द्वारा प्रकाशित होती है। तथापि यदि शक्ति संपन्न अधिक उत्कृष्ट से सर्वथा भिन्न है, वनस्पति जगत में हम हीन कोटि के तथा सबल जाति के पौधे को यहाँ वहाँ विस्तृत होते देखते हैं। इतिहास में केवल अल्प वर्ग में होने के कारण श्रेष्ठ वर्ग का प्रभाव एक गंभीर खतरा है। संभवतः प्राभूत शक्तियाँ अधिक श्रेष्ठ तथा उत्कृष्ट थीं, किंतु विजयी शक्तियाँ यद्यपि वे केवल महत्वाकांक्षा से प्रेरित थीं, एक ऐसे भविष्य का उद्घाटन करती हैं जिनके विषय में उन्हें लेस मात्र भी भाव नहीं होता। इसका सबसे बड़ा दृष्टांत रोमन साम्राज्य से प्राप्त होता है। यह भयानक युद्धों के पश्चात अस्तित्व में आया तथा विभिन्न भूक्षेत्र रोमांचकारी रक्तपात की लपेट में आए। यहाँ एक बड़े पैमाने पर हम एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रयोजन देख सकते हैं जो एकदम स्पष्ट है, अर्थात एक विश्व सभ्यता की सृष्टि जिसने एक विश्व धर्म के प्रचार को संभव बनाया। तथापि इस तथ्य विशेष से कि शुभ अथवा श्रेष्ठ का उद्भव दुष्कृति से हुआ, हम यह कदापि नहीं उपकल्पित कर सकते कि दुष्कृत तथा दुख प्रारंभ में दुष्कृत तथा दुख नहीं थे। प्रत्येक सफल हिंसात्मक कर्म दुष्कर्म होता है तथा कम से कम एक खतरनाक आदर्श होता है, किंतु जब उस कर्म से शक्ति की स्थापना हुई, लोगों द्वारा इसके पश्चात अथक प्रयासों द्वारा इस शक्ति मात्र को नियम तथा व्यवस्था में रूपांतरित किया गया। अपनी शक्ति से उन्होंने हिंसा की अवस्था को दूर करने का प्रयत्न किया। पुनः कभी कभी दुष्कर्म का साम्राज्य दीर्घकालीन होता है। ईसाई विश्वास के अनुसार इस विश्व का शासक शैतान है। दुष्कर्म इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अस्तित्व स्वार्थ विहीन सद्गुण की पहली अपेक्षा है। यह एक भयानक दृश्य होगा यदि निरंतरता अच्छाई के पुरस्कृत तथा दुष्कर्म के दंडित होने के परिणाम स्वरूप सभी लोग एक प्रचंड प्रयोजन रखते हुए भी सद्व्यवहार करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि वे दुष्कर्मी व्यक्ति ही रहेंगे तथा उनके हृदय में दुष्कर्म का अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा समय भी आ सकता है जब मनुष्य केवल एक बार पुनः उनके वास्तविक स्वभाव को देखने के उद्देश्य से भगवान से उनके अपराधों के लिए थोड़ी सी क्षमा करने की प्रार्थना करने लगेंगे। विश्व में वैसे ही पर्याप्त पाखंड है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विनाश के पश्चात नई सृष्टि का उद्भव नहीं होता। जिस प्रकार वनस्पति के विज्ञान से विनाश से कोई भूक्षेत्र सदैव के लिए उर्वरता विहीन भूमिखंड बन जाता है, उसी प्रकार निसंस्था पूर्वक दमित जनसमुदाय भी पुनः नहीं उठ पाता। उदाहरणार्थ एशिया की तात्विक शक्ति दो अनुक्रमिक मंगोल प्रभुत्व कालों द्वारा सर्वथा विनष्ट हो गई जान पड़ती है। तिमूर की निसंस्था विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी ध्वंसात्मक प्रवृत्ति तथा विनाश लीला के शिकार हुए देशों से लोग सही तथा मानवीय दया भावना में विश्वास खो देंगे। तथापि उसमें संभवतः यूरोप को ओसोमनालियों से बचाया। इसके उसके बिना इतिहास की कल्पना करके देखें। जबकि बाजाजेन तथा हुससाइट लोगों ने एक साथ जर्मनी तथा इटली को सर्वथा अभिभूत कर दिया होता। इस प्रकार बड़े साम्राज्यों की स्थापना भी भयानक नैराश्य तथा दुख की भीति पर होती है। उदाहरण के लिए सिकंदर की महत्वाकांक्षा में जितने जन समुदायों को संघर्ष करते हुए विनष्ट होना पड़ा होगा, क्या उनका संघर्ष निरर्थक था? इस प्रकार के संघर्ष में रत जिन लोगों के अंतिम विनाश से हम परिचित हैं, उनके विषय में हम सर्वथा भिन्न प्रकार से सोचते हैं। यदि मानव जाति के प्रति एक महान शिक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है यह कि संपूर्ण के लिए सभी कुछ उत्सर्ग कर देना चाहिए तथा यह कि व्यक्ति का जीवन सर्वोपरि नहीं है और इस प्रकार उनकी निराशा से विश्व के लिए एक कठोर किंतु उदात्त सुख तथा प्रसन्नता का जन्म होता है। सभी बड़े विध्वंसों के विषय में एक बात अवश्य कही जानी चाहिए, चूंकि इतिहास की अर्थव्यवस्था से हम अनभिज्ञ हैं अतः हम यह नहीं जानते कि उस समय क्या हुआ होता यदि कोई घटना विशेष, चाहे वह कितनी भी भयानक रही हो, नहीं घटी होती। इतिहास की एक घटना जिसे कि हम जानते हैं के स्थान पर संभवतः दूसरी जिसे हम नहीं जानते घटी होती एक दुष्कर्मी दमनकारी के स्थान पर संभवतः कोई उससे भी बुरा उद्भव हुआ होता। तथापि किसी भी शक्ति संपन्न व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने दोष विमोचन के लिए यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है, यदि हम यह नहीं करते तो कोई और करेगा, क्योंकि उससे किसी भी अपराध को उचित ठहराया जा सकेगा। यह भी हो सकता है कि विनष्ट वर्ग यदि कुछ दिन और अधिक रहा होता तो संभवतः वह हमारी सहानुभूति का पात्र नहीं रह जाता और अधिक रहा होता तो संभवतः वह उतना सुखी सभ्य एवं दोष विमुक्त नहीं रह जाता। जबकि इस प्रकार की गरिमापूर्ण संघर्ष में विनष्ट हो जाने के कारण हम संप्रति उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। एक दूसरी दिशा से सांत्वना की प्राप्ति क्षतिपूर्ति के रहस्यपूर्ण नियम द्वारा होती है, जो कम से कम इस दृष्टांत में प्रकट होती है कि प्रत्येक महान रोग तथा युद्ध के पश्चात जनसंख्या में असाधारण वृद्धि होती है। कभी कभी यह क्षतिपूर्ति अवश्य संभावी प्रतीत होने वाली घटना के विषय में किसी समय के लिए स्थगित हो जाने से होती है। कभी कभी यह घटना नहीं घटनी चाहिए क्योंकि भविष्य में उसे और भी परिष्कृत ढंग से घटना होता है। उदाहरणार्थ 30 वर्षों के युद्ध में दो बार जर्मनी की एकता स्थापित होते होते बची, एक बार 1629 में वालेंस्टाइन द्वारा, दूसरी बार 1631 में गुस्तावस एडोल्फस द्वारा, किंतु दोनों ही समयों में एक भारी बिलगाव विशेषण रह गया होता। 240 वर्षों तक यह एकता स्थगित रही, किंतु जब यह प्राप्त हुई तब इस समय वह बिलगाव सर्वथा समाप्त हो गया था कभी कभी संस्कृति की एक शाखा के विनाश पर दूसरी शाखा का पुनर्स्थापन होना होता है। उदाहरणार्थ 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में जब कविता उपेक्षित थी तथा चित्रकला अर्ध मृत सी थी, उस समय संगीत अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गया। ऊपर की चर्चा में हमारा विवेचन अव्यक्त रूप में शुभ तथा अशुभ भाग से हटकर मानव चेतना की अतिजीविता पर मुड़ गया है, जो अंत में हमारे प्रति स्वयं को एक व्यक्ति के जीवन के रूप में प्रस्तुत करती है। वह जीवन जैसे जैसे यह इतिहास में तथा इतिहास के माध्यम में आत्म चैतन्य बनता है, चिंतनशील व्यक्ति की दृष्टि को तथा उसकी शक्ति को इस प्रकार अपने प्रति आकर्षित तथा केंद्रित करता है कि भाग्य तथा दुर्भाग्य की अवधारणाएं अनिवार्यतः मलिन हो जाती है। परिपक्वता ही सब कुछ है। कुशल मस्तिष्क सुख के स्थान पर ज्ञान को अपना लक्ष्य बनाता है।